તારીખ 6/5/1992 શ્રી સમયસર ગાથા 3 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 4.
और पर्स में है वो जैन क्यों अपने बयान में अशुद्धता में जो उतना बह गया अपनी ताकत अपनी शक्ति उसका दुश्मन પરિણમતા હૈ અપને સ્વરૂપ મેં દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર એકત્વ કરતા હૈ એકત્વ પરિણમતા હૈ શુદ્ધિ હૈ નિર્દોષતા હૈ ગુરુ કી પ્રાપ્તિ હૈ ઇસલિયે तो लोग में सुंदर है उसकी शोभा है और वो दूसरों पदार्थ के साथ बंधन संबंध वाले का परिणाम करता है ये जो बात है कि अपने आप में विरोध वाली है और दुखदायी है ऐसा प्रतिपादन तो तीसरी गाथा में आचार्य महाराज નિશ્ચય વધો સમરો સર્વત્ર સુંદર લોહે મંજુરાયે તે નિસંવાદી ऐसा इसको परिणाम प्राप्त है कि लोक में कहां भी हो कहीं भी हो सुंदर है नारके में हो तो भी
सुंदर है
त्रिलिंग में हो तो भी
सुंदर
है शरीर असुंदर है तो भी वो सुंदर है सुंदर का मतलब ये ऐसे भी ज्ञान नहीं होते जिसको शरीर की कुरूपता हो गई कुरूपता नहीं हो गई कुरूप शरीर हो गए तो भी वो लोक में सुंदर है गुणवान है गुणवान है इसलिए सुंदर है
जाती है चांडाल हो
चांडाल हो गुड़ी हो जमीन हो और नारके का शरीर ही ब्याहना होता है उनका तो शरीर ही ब्याहना होता है भाई प्राप्त हो तो ऐसा होता है श्याम होता है बड़े बड़े ऐसे इनके हम उपांत होते हैं लेकिन वो सुंदर है जो अपने आत्मा के निश्चय सर्वत्र लोग में
सुंदर है
इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ भक्ति तथा एकत्व में दूसरे के साथ मन की कथा भी सुनवादियां विरोध करने वाली है अपने अभेद स्वरूप में दूसरे की मिलावट हो गए सबंध हो गए मिश्रण हो गए अशुद्ध तत्व नहीं रहता अशुद्धता को प्राप्त होना है इसलिए स्वरूप से विरोध वाली है दुखदायक है, दुख से यह बात निश्चित हुई कि जगत में जीव को दुख की प्राप्ति क्यों होती है, कि अपना अभेद स्वरूप में अभेद भाव से तन्मय नहीं रह करके दूसरे पदार्थ में उसको रस आता है, दूसरे पदार्थ में उसको सुख भाषित होता है और दूसरे पदार्थ से उसको लाभ दिखता है, मानता है, जानता है, तो वहाँ विवाद होता है, परिणाम में वहाँ
विवाद
होता है और अपनी शांति का विरोध होकर के अशांति की प्राप्ति होती है, यही अशांति और दुख का कारण है। मूल में ये बात है, जो जीव जितना भी पर संयोग में रस लेता है उतना ही उसी वक्त वो जीव जहर को पीता है। क्या है? रस लेता है वो उनको मीठा लगता है, अच्छा लगता है, रस आता है तो अच्छा लगता है, उसी को रस आया कहते हैं, लेकिन उसी वक्त वो अपने शांति को मारने के लिए तो जहर को पीता है। या तो उसको दूसरे तरह भी कह सकते हैं कि ऐसे जीवन के रस वाले परिणाम में उसको जीना पसंद है। क्या है?
उसको जीना पसंद है
जहाँ उसको रस आता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरा ये जीवन बहुत अच्छा है, मैं सुखी हूँ, मेरा ये जीवन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं ऐसे ही जिंदा रहा करूँ, क्या उसकी भावना होती है? मैं अनंत काल तक ऐसे ही जिंदा रहूँ, जो अभी मुझे रस आता है, सुख आता है, उसे करता है। तो ज्ञानी पुरुष उसको कहते हैं कि वो जिंदा रहने के लिए जहर को पीता
है।
क्या? उसको जिंदा रहना है और पीता है क्या? जहर को पीता है। जीवित रहने के लिए जहर को पीता है। क्या जीवित है वो रह सकता है? वो
नहीं।
ऐसी ये विरोध करने वाली कथा है, ये बात है, विरोध
विरोध करने वाली
आत्मशांति के आत्मा के सुख के आनंद के विरोध करने
वहाँ तो इस प्रकार के रस में वेदन करता ही रहता है, दिन भर वेदन करता है, यहाँ आता है तो की बात सुनता है तो उसको निषेध आता है, उस निषेध तो टिक तो नहीं पाता है बाद में।
ये तो यहाँ तो पुरुषार्थ करना है, ये तो पुरुषार्थ करने की जगह हुई कि ये सुनते हैं तो बात सही लगती है और फिर हमारे संयोग में हम भी रस लेते हैं। तो जब हम संयोग में रस लेते हैं इस वक्त इस बात का कोई स्मरण रहता है या नहीं रहता है? क्या होता है? विस्मरण हो जाता है। क्यों विस्मरण क्यों हुआ? जहाँ अपने को नुकसान हुए, अशांति हुए, दुख हुए, ऐसे विषय में हम क्यों विस्मरण करते हैं? इस बात को हमारे शांति की सुख की बात को विस्मरण हम क्यों करें? ये सुख दुख का जहाँ प्रश्न है, ये प्रॉब्लम है, वहाँ हम सही बात को विस्मरण क्यों करें? क्यों करते हैं? ये मात्र स्मृति की चीज नहीं किंतु ये सावधानी की चीज है। स्मरण करने से तो थोड़ा रस कम होगा, तीव्र रस में तो स्मरण ही नहीं आएगा, लेकिन अगर स्मरण हो गया तो ये इतनी पावरफुल चीज है कि रस थोड़ा मंद हो जाएगा और सावधानी होगी अपने स्वरूप की कि मैं तो पुनरादि संयोग में भिन्न ज्ञानमय आत्मा हूँ, पुनर संयोग से भिन्न ज्ञानमय में आत्मा हूँ, मेरे ज्ञान में कहीं बुद्धियों का प्रवेश नहीं और मेरा ज्ञान कहीं सुंदर पर्याय में प्रवेश कर सकता नहीं, छू सकता भी नहीं, स्पर्श भी कर सकता नहीं। ऐसी सावधानी हो गई तो सावधानी को पुरुषार्थ कहने में आया है, किसी को भी पुरुषार्थ कहते हैं तो उसमें तो फिर रस आने वाला नहीं है।
प्राप्त संयोग तक के बात बराबर है, लेकिन हम लोग तो उसको संयोगों को वृद्धि करने के लिए संयोगों को वृद्धि करने के लिए भी प्रयास करते रहते हैं,
उत्साहित रहते हैं,
उत्साहित रहते हैं,
संयोग वृद्धि करने के लिए उत्साहित रहते हैं। तो फिर स्मरण करेंगे कहाँ से, सावधानी की तो बात स्वप्न में भी नहीं आएगी। लेकिन इसलिए तो कहते हैं कि भैया ध्येय बदल क्या, संयोग को जुटाना, संयोग की वृद्धि करना, संयोग बढ़ाकर सुखी होना, ये हमारे जीवन का ध्येय नहीं है, ध्येय बदलना है। एक करना पड़े आजीविका के कारण, इसमें भी परिणाम नहीं बिगाड़ना है, इसलिए या तो या चक्रवर्ती से परिणाम बिगड़े दीनता से, या तो प्रतिकूलता से परिणाम बिगड़े। तो करना पड़े वो दूसरी बात है, और सुखी होने के लिए अभिप्राय से करें तो बिल्कुल विपरीत बात है।
जैसे एक दफा आपने कहा कि जो मनुष्य है पंचेंद्रिय मनुष्य हुआ है, जैन कुल में जन्म हुआ है, सही बात सामने आई है, तो इतना पुण्य तो लेके आया था, इसमें क्या दो रोटी का विश्वास नहीं है?
लेकिन जीव को सिर्फ दो रोटी नहीं चाहिए, उनको बहुत बड़ी इज्जत चाहिए जिसमें हजारों रोटी की संख्या आ जाती है। दो रोटी के नहीं आती, लेकिन हजारों रोटी की संख्या आ जाती है। तो मेरी इतनी इज्जत होनी चाहिए, समाज में मेरा इतना स्थान होना
चाहिए
तो वहां तो फिर ऊपर ऊपर में तो शेर के ऊपर सवा सौ दिखता है, जो हजार पति है उसको लखपति दिखता है, लखपति वाले को करोड़पति दिखता है, करोड़पति को अरबपति दिखता है, और अरबपति वाले को भी मल्टी मिलियनर्स इतने दिखते हैं कि फिर वो भी एंडलेस, जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उसका जीवन तो कहाँ खत्म हो जाता है, पता ही लगता नहीं है। बात बात में जीवन पूरा होता है।
शास्त्रों में जिस भाव हिंसा की बात आती है उसको इस प्रकार से अवलोकन करना चाहिए कि इसमें मेरी भाव हिंसा हो रही है, मेरी हिंसा हो रही है।
भाव हिंसा में ज्ञान और शांति, ज्ञान और आनंद दोनों अपने प्राण हैं, तो प्राण का खून होता है हिंसा, और ऐसे हिंसा के परिणाम से दूसरे प्राणियों के लिए हिंसा निमित्त नैमित्तिक रूप से हो जाएगी, और स्वरूप की अहिंसा होने से दूसरे प्राणियों की भी अहिंसा हो जाएगी। तो ये बात है, तो दूसरा भी उसमें एक न्याय है कि जिसका रस आता है उसका विस्मरण नहीं है, परिणति हो जाती है, स्मरण करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो हमने आत्मा के एकत्व निश्चय की बात सुनी, वो अगर रस से सुनी होती तो उसकी परिणति उसके विरोधी परिणामों का निषेध कर देती, लेकिन सुनते वक्त हमारा रस नहीं उतना, तो ये बात टिकती नहीं है। टिकती क्यों नहीं है?
बराबर
कंप्लेन तो है, तो बात के कि बात टिकती नहीं है, सुनते हैं रोज, रोज सुनने पर भी नहीं टिकती है, अभी सुनी हो नहीं थी कि ठीक बात है, रस से तो एक दफे सुनी हो तो भी टिक सकती है, और बिना रस से हमेशा हमें सुने तो भी वो बात टिकने वाली। ये मेरे परम हित का विषय है। किस तरह से रसाना चाहिए? मेरे परम हित का विषय है। समय सार परमागम आचार्य जैसे महान धर्म धुरंधर आचार्य का वाणी है, अमृत चंद्र आचार्य जैसे जैसे धर्म धुरंधर आचार्य की वाणी है, बहुत महान पुण्य होने से ये वाणी सुनने को मिलती है या पढ़ने को मिलती है। और मेरे कर्म तो और सब जगह से लक्ष्य को हटा करके पूरा हित बुद्धि से पूरी हित बुद्धि से स्वाध्याय इत्यादि में रस लें तो ये बात नहीं टिके, ऐसा बन सकता नहीं। ये तो साइंस है, विज्ञान है। रस लेंगे तो टिकेगी, रस नहीं लेंगे तो टिकाना चाहे तो भी टिकेगी
नहीं।
तो रस लेंगे तो स्मरण भी नहीं करना पड़ेगा, सहजी अपराध आगे हो जाएगी। बात तो ये क्या हो रहा है, रस आता है मुझे, ये क्या हो रहा है? तो जय खाने की बात मीठा जय कैसा, जैसे मिश्री लगाई हुई छुरी होती है, जीभ को काटते हैं और स्वाद में एकाग्र होता है तो जीभ कट गई उसका पता चलता नहीं, ऐसा हो जाता है।
ये चीज पावरफुल है, ये चीज पावरफुल है, इसका प्रैक्टिकल अनुभव होने के बावजूद भी इस बात को स्मरण में भूल जाता है, सब भूल जाते हैं।
प्रैक्टिकल अनुभव किसको
ऐसा बना बनाव में ऐसा बना बना कि इसको इस बात का पूरा पूरा ख्याल आता है।
कभी कभी नहीं होता है,
अरे वैसे ही जो जिस वक्त इसको ख्याल है तो वो स्मृति तो है इसको,
मतलब कितनी है कितनी
शक्ति का ख्याल आता है, फिर भी वर्षों से इस बात को बोल रहा है उसको।
तो इसका मतलब कि जिस अनुपात में उसको उसमें अपना हित भाषित होना चाहिए उतना हित भाषित नहीं हो रहा है, और जिस प्रसंग में वो भूलता है वहां सुख और हित भाषित हुआ है उसका अनुपात ज्यादा है। अब दो बात आमने सामने लगे परस्पर विरोधी, तो पल्ला तो जिसका भार है उसका नीचे बैठेगा। हमारा रस अगर फुजल पदार्थों में ज्यादा है तो दुश्मन कर जाएंगे, हमारा रस आत्म पदार्थ में हमारे हित के काम विषय में ज्यादा है तो बात मुख्य हो जाएगी, ऑटोमेटिक है, करना नहीं पड़ता हो तो।
स्मरण विस्मरण का जो सिद्धांत आपने अभी बताया बराबर
यहाँ समय शब्द से सामान्यतया सभी पदार्थ चले जाते हैं, समय शब्द से द्रव्य कहे जाते हैं, जीव परमाणु सुगत धर्मात्मिका धर्मात्मिका परमाणु कहता, क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार समय से अर्थात एक ही भाव से एकत्व पूर्वक अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है तो समय है। ये व्युत्पत्ति करता व्युत्पत्ति मैंने क्या शब्द का अर्थ जैसा गुणवाचक शब्द है, जैसा गुण है ऐसा ही गुणवाचक शब्द है, तो शब्द का अर्थ भी उसका स्वरूप को दिखाता है कि समय से मैंने गुण पर्याय को प्राप्त और प्राप्त उतना ही नहीं गुण परिणमनशील साथ में ही है, गुण पर्याय समेत परिणमनशील है उसको समय पे ऐसा कहने में खड़ा। तो क्षणी द्रव्य अपने गुण पर्याय को प्राप्त होते हैं और परिणमन भी करता है, तो सभी पदार्थ समय है। इसलिए धर्म अधर्म आकाश काल जीवन चित्र लोक में सर्वत्र जो कुछ जितने जितने पदार्थ हैं वे सभी निश्चय हैं। वास्तव में एकत्व निश्चय को प्राप्त होने के लिए सुंदरता को पाने अपने शुद्ध गुण पर्याय के साथ एकत्व रूप से परिणाम करते हुए छह पदार्थ की सुंदरता है। कब है नहीं है कि मिलावट होती है। सोना शुद्ध होता है तो सुवर्ण शुद्ध है सुंदर है, अगर उसमें चांदी तांबा या कोई अन्य धातु मिलाए तो उसकी सुंदरता नष्ट होती है। ऐसे क्योंकि अन्य प्रकार से उसमें स्वर्ग शंकर आदि दोष आ जाएंगे। शंकर मैंने मिश्रण होना, स्वर्ग शंकर शंकर मैंने मिश्रण होना, ये शास्त्रीय परिभाषा है कि वर्ण शंकर नहीं कहता वो ब्राह्मण है लेकिन नीच जाति के स्त्री के साथ शादी हुई तो उसका जो प्रजा है वो वर्ण शंकर प्रजा है। वो केवल ब्राह्मण
नहीं है
न वो चमार भी है वो ब्राह्मण ब्राह्मण भी है। तो ऐसे प्रजा को वर्ण शंकर प्रजा कहने में आता है। वर्ण मैंने क्या उसका जो वर्ग था उसमें मिश्रित हो गया। ऐसे जीव भाव में भी पुद्गल का रस लेने से क्या होता है नेक शंकर दोष और भाव भाव शंकर भाव भाव शंकर दोष जो आगे कहेंगे तो बात हो जाएगी। तो कर्म काल में आया और अपना परिणाम उसी तरह का हो गया जैसा उदय आया वैसा हो गया। तो कर्म हुआ भावक और अपने परिणाम हुआ भाग्य। शंकर दोष होने से शोभा बिगड़ गई जीव की शोभा
बिगड़ गई।
ऐसे क्योंकि अन्य प्रकार से उसमें सर्वशंकर आदि दोष आ जाएंगे। वे सब पदार्थ अपने धर्म में अंतर्बद्ध रहने वाले अपने अनंत धर्म के चक्र को समूह को चुंबन करते हैं स्पर्श करते हैं। सभी पदार्थ अपने द्रव्य में अंतर्मग्न अंतर में रहे हुए अपने सभी अनंत धर्म है उसके साथ उसका संबंध है उसके साथ उसका एकत्व है उसके साथ उसका परिणमन रहना चाहिए। धर्म के अनुसार उसका परिणमन गुण के अनुसार परिणमन रहना चाहिए। चुंबन करते हैं स्पर्श करते हैं मैंने वो अपने धर्म चक्र को गुण चक्र को के अनुसार परिणाम करना चाहिए और परिणाम करते हैं। तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। द्रव किसी द्रव का स्पर्श नहीं करता, गुण कभी दूसरे पदार्थ के गुण का स्पर्श नहीं करता, पर्याय कभी दूसरे पदार्थ के पर्याय के साथ स्पर्श नहीं करता। द्रव अन्य द्रव गुण पर्याय को स्पर्श नहीं कर सकता, गुण अन्य द्रव गुण पर्याय को स्पर्श नहीं कर सकता, पर्याय भी अन्य पदार्थ के द्रव गुण पर्याय को स्पर्श
नहीं कर सकता।
वाह, ये मर्यादा
है। ये पदार्थ की मर्यादा मर्यादा है।
ये वस्तु की मर्यादा है, वस्तु का वैज्ञानिक मर्यादा है, उसमें कोई भेद भेद हो सकता
नहीं।
चाहे जीव इसको स्वीकार करे, एक भी जीव उसका स्वीकार करे या अनेक जीव उसका स्वीकार करे, एक अस्वीकार करे या अनेक अस्वीकार करे, इसकी कोई अपेक्षा पदार्थ के विज्ञान को
नहीं है।
विज्ञान तो जैसा है वैसा रहेगा, कोई माने नहीं माने उससे कोई मतलब।
ये पदार्थ का विज्ञान है, इसमें से ये बात भी निकलती है कि पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय को स्पर्श नहीं करते।
एक गुण दूसरे गुण को स्पर्श नहीं करता, एक पर्याय दूसरे पर्याय को स्पर्श
नहीं करता।
कैसे बात है? यहाँ तो दो अलग अलग दो विभाग है, तो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं और अपने धर्म को पर्याय में रखते समाप्ति है बात खत्म। पानी जब पानी के रस का उष्ण है उसको इसका स्वभाव तो ठंडा स्वभाव है, ठंडा स्वभाव का त्याग कभी एक परमाणु से दूसरे परमाणु का कार्य नहीं। विश्व में जो भौतिक विज्ञान है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों और मैकेनिकल हो कोई भी हो केमिकल हो कोई भी किसी भी वैज्ञानिक ब्रांच में जाओ वहाँ थियोरी ऑफ रिलेटिविटी चलती है। क्या चलता है किससे किसका कितना संबंध से कितना कार्य हो गए यही एक प्रिंसिपल पर सारा संशोधन और सारी बात चल रही है। और जैन दर्शन का विज्ञान की मूल बात इससे दूसरा थियोरी ऑफ नॉन रिलेटिविटी एक का दूसरे के साथ कुछ संबंध नहीं है। ठीक कहेंगे कि कभी कभी दो पदार्थ के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध देखा जाता है। निमित्त नैमित्तिक मैंने कुछ करे वो बात नहीं है लेकिन उपस्थिति के कारण कोई कार्य हो गए सिर्फ इसकी उपस्थिति हो गए और कार्य हो गए ऐसा धर्म है। परस्पर में ऐसा धर्म है कि जब स्वयं कार्य करे तो दूसरे की उपस्थिति हो। जैसे मछली पानी में तिरती है क्या मछली पानी में तिरती है तो पानी उसको किराता नहीं पानी उसको किराता नहीं जो स्वयं तिरती है तब वो पानी उसको मिलता है। पानी का प्रवाह तो उतना हो गए नदी हो गए तो पूर आती है तो खूर में उतना प्रवाह हो गए कि हाथी भी उसमें बह जाए प्रवाहित हो जाए लेकिन मछली है वो सामने खूर पे सकती है इधर से खूर आता हुआ मछली उधर सामने जा सकती है क्यों कि उससे उसको खूर से कोई संबंध नहीं है प्रवाह से कोई उसको
संबंध नहीं है।
हमने तो देखा है सब पक्षी है तो हवा में उड़ता है वह उसको उड़ाता नहीं वह उसको
उड़ाता नहीं है
उड़ाता स्वयं में उड़ने की ताकत है तो उड़ता है। मछली नहीं उड़ेगी मनुष्य नहीं उड़ेगा कौन पक्षी पंखी है वो
उड़ेगा
और हवा यहाँ से आती हो तो सामने जा सकता है उधर कहीं भी जा सकता है। हवा में मकान गिर सकता है लेकिन पक्षी को सामने जाना है तो हवा उसको जाने में साधन होती है निमित्त होती है। तो अपनी शक्ति से जो काम पदार्थ करता है अपने में ऐसा काम करने का गुण है उसमें दूसरे पदार्थ के उपस्थिति को निमित्त कहने में आता है। ऐसा भी एक धर्म है वो धर्म है गुण नहीं है लेकिन वो
धर्म है
निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो धर्म है। धर्म और गुण में क्या फर्क है तो गुण है वो पदार्थ की प्रॉपर्टी है और धर्म है वो कैरेक्टर है। क्या साइंस में आता है पदार्थ की प्रॉपर्टीज होती है और कैरेक्टर तो धर्म गुण क्या गुण गुणी अभेद होते हुए भी आपस में ऐसा भाव है, क्या शास्त्र में क्या शब्द प्रयोग किया है, ऐसा भाव, फिर ए भाव रूप नहीं होना, इस भाव रूप नहीं होना, गुण गुणी के भाव रूप नहीं होता कभी चिंता में, और गुणी गुण भाव रूप कभी के लिए वस्तु दृष्टि से ब्रह्म है, तम है, अभेद है, एक वस्तु है, दो वस्तु दो सत्ता नहीं है। अपने जो कुंभ है विकास सबके कुंभ पर अपने सौभाग्यवश उनके अनुभूत वाणी अनुभवपूर्ण वाणी अभी रह गई है की परंपरा से, वहां से तुमको जाए कहाँ जाना, क्या वहां जाना, जहाँ है वहां
जाना,
बात नहीं समझे वहां से सुबह समझाते हैं इतने किया वहां धोने ने, 25 किया वहां धोने अनंत किया, तो आप होना सीखते अनंत काल की
द्रव्य गुण अने पर्याय ने इतनी पूरेपूरी स्वतंत्रता होवा छता निमित्त कारण जयारे मळे छे तो निमित्त नी असर आपणने विभावमां जवाथी आटली बधी रीते थाय छे, तो एनो अर्थ निमित्त कारण नी असर वधारे जोरदार छे अने स्वभावनी असर ओछी छे, तो स्वभाव करता पण निमित्त ऊपर चढ़ीने बलवान थई जाय छे, તો આમાં સ્વભાવ કરતા પણ નિમિત્તનું પડવાનું પણ છે, આપણે જે વિભાવમાં જતા રહીએ છીએ એમના જે ભાઈએ વાત કરી અહીંયા આપણે સાંભળીએ છીએ ત્યારે તો આપણને
આપણા માટે જુદી વાત છે, આપણા માટે છે માટે એવી બધી વસ્તુ સ્થિતિ છે એ વાત નહીં, સ્વભાવ કી તાકત અનંત હૈ ઓર વિભાવ કી તાકત મર્યાદિત, વિભાવ કી તાકત મર્યાદિત હૈ और स्वभाव की ताकत अमर्यादित है, अगर ऐसा नहीं होता तो सभी को संसार में रुलना पड़ता, किसी का सिद्धत्व को किसी को प्राप्त होता
नहीं,
अनंत तो कोई उदय नहीं है, सातवीं नारकी में कितनी वेदना है इसका अनंत भाग इधर नहीं है, और वहां हजार का करोड़ा अरब का नहीं असंख्यात नहीं अनंत का भाग भी इधर
नहीं है,
फिर भी हमको असर होती है, थोड़ी भी वेदना होती है शरीर में ऐसा था कि तो हमको असर होती है, पर वह सातवीं नारकी में इस वेदना को छोड़ करके अतीन्द्रिय शांति में स्वरूप में लीन होते हैं, समीप दर्शन की प्राप्ति होती है, और आनंद में और शांति में अंतर सुखरस्त अपनी ताकत को संभाले तो सुपीरियरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, अपनी ताकत को भुला हुआ है तो इंफीरियरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में रहता है, बस यही बात है, उतनी सी बात है, ऐसी मान्यता ग्रहण करें, मान्यता में कैसा ग्रहण किया, तेरे पहली कथा की किताब में हमको शंकराचार्य का है, मैं भी सिद्ध तू भी तू मेरा शिष्य और मैं तेरा गुरु, ऐसा बात नहीं किया सुनाने वाले को, तुम इशारे से सुनाया प्रारंभ ऐसे किया है, तो पहले मान्यता बदलनी है, मैं मूल में कौन हूं, साक्षात शुद्ध प्रमुख स्वरूप हूं, ये मान्यता सबसे पहले चाहिए, किसी पुरुष को सुनिए दर्शन कहते हैं, तो फिर नारकी में भी निमित्त की असर नहीं होगी, गर्व नहीं होगी लेकिन नारकी में भी
नहीं होगी,
और देवलोक की अनुकूलता में भी वो तो फंसेगा
नहीं,
बहुत अनुकूलता है वहां भी फंसने वाला नहीं है, तो निमित्त तो जहां कहां तक बलवान है कि जहां तक अपने आप को निर्बल दीनहीन स्वीकार करता है ताकत को संभालता है, जैसे कोई एक अच्छे घराने का लड़का है, खानदान घराने का लड़का
है,
हाँ घर में उसने निकेटा रखता है, कुछ नहीं था, मेरी में पेटोड़ी में रहता था, बच्चा ही वहां जन्म हुआ, वहां रहने लगा था, तो पता नहीं था तो मैं सिंह हूँ। तो दूसरा सिंह आया तो वो भी सबके साथ भाग भरने लगता था, सब बेटे बढ़िए बढ़ने लगे, वो भी बढ़ने लगता था, देख लिया तो वो पानी पीने में उसे देखा, वो मेरा तो मैं विष्णु देखा है, ये देखा मेरा मुंह नहीं है, चेहरा ही बोले। उतनी बात को हम ग्रहण नहीं कर सकते, इतनी छोटी इतनी संक्षेप, कोई उसमें घोटाला होने का चांस नहीं है, इतनी बात हम नहीं ग्रहण करें, इतनी हमारी पकड़ है वर्तमान दीनहीन अवस्था पर, हमारी इतनी पकड़ है, वो पकड़ हम छोड़ते नहीं, और हम जो मूल स्वरूप है उसको हम ग्रहण करते हैं, सुधारते नहीं। इसलिए कहते हैं योगिंद्र देव मेरे योग सार में कहते हैं कि परिपूर्ण शुद्ध सिद्ध परमात्मा से किंचित मात्र भी अपने को न्यून मानना अपने स्वरूप में, इस ऐसा इतना तो इससे कोई बड़ा पाप है
नहीं,
ये सबसे बड़ा पाप ये है अपना मूल स्वरूप को स्वीकार नहीं करके, परमात्मा की स्थिति में जो हमारी गिनती है लोक की नजर में, संसारियों की नजर में, वो हमको इतने प्रिय है कि हम भगवान की बात को भी बात मानते हैं, भगवान की वाणी को भी हम बात मानते, इतना अनादर करते हैं उनको, तो फलाना फलाना वही हमको प्रिय है, हमको फलाना फलाना है वही हमको प्रिय है। दुखी होने की यही मूल कारण तो दुखी होने का यही बात है।
જિસકો
પરિપૂર્ણ નિર્દોષ અવસ્થા મેં હોના ઉસકો દો બાત દેખની પડેગી, એક તો અપના મૂળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ અનંત ક્ષમતા, દૂસરે અપની અવસ્થામાં જે દોષ રહ્યા હૈ ઉસકો ભી દેખના પડેગા, પ્રથમ ચરણ તો અપના દોષ દેખને કા હૈ, પ્રથમ ચરણ વો હૈ, ક્યું કે યહાં સે હી દોષ નિકાલને કા ભાવ હોતા હૈ, યે દોષ મૂળ સ્વરૂપ મેં નહીં અવસ્થા મેં હૈ, ક્યા મૂળ સ્વરૂપ મેં દોષ નહીં હૈ અવસ્થા મેં દોષ હૈ, પર સુધાર ભી અવસ્થા મેં કરના હૈ, મૂળ સ્વરૂપ મેં નહીં કરના હૈ, અવસ્થા મને અપની પર્યાય અપની હાલત વર્તમાન પોઝિશન અપની ચાલુ જો પોઝિશન હૈ ઉસકો અવસ્થા કહેતે
હૈ, પરલક્ષ નહીં
હૈ, પરલક્ષ નહીં હૈ, ઉસમે સ્વલક્ષ હૈ, પ્રારંભ સ્વલક્ષ કા યહાં સે હોતા હૈ,
ઓબ્જેક્ટિવ
હાં ઓબ્જેક્ટિવ વો હૈ, ઓબ્જેક્ટ તો અવસ્થા કો સુધાર કરને કા હૈ, તો પરલક્ષ કૈસે હોતા હૈ, યહાં સે હી સ્વલક્ષ કા પ્રારંભ હોતા હૈ, जैसे हम तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हैं उसमें सब पर्याय भावों की बात चलती है, पर अपने पर्याय भाव तो देखे नहीं, पर थियोरी को समझ ले तो काम नहीं मिला, तो कहते हैं कि दीखा नहीं निज दोष को करिए कौन का बताना, दोष दोगा जी तो कहे कि ये दोष काढ़वा देगा के रातक में रहने काढ़वा में पुरुषार्थ न आवे, देखे तो निकालेगा पुरुषार्थ करेगा, तो अपने को भान नहीं हो गए, अब जिसको अपना दोष का ख्याल नहीं है, भान नहीं है, पता नहीं है, जो स्थूल है उसको त्रिकाली सूक्ष्माति सूक्ष्म जो स्वभाव सामर्थ्य शक्ति रूप है उसका भाव भाषण कैसे होगा, उसका पता कैसे चलेगा, ये तो सूक्ष्म है, ये दो इसका असर तो हम पढ़ नहीं सके, और दो सेंटीमीटर का हम पढ़ सकेंगे क्या?
नहीं,
पहले तो स्व लक्षण में स्थूल परिणाम है, फिर सूक्ष्म परिणाम सूक्ष्म भाव देखने में आता है। और विरोध इसलिए नहीं है कि दोष देखने में भी दोष निकालने का लक्ष्यार्थ है और निर्दोष स्वभाव को देखने में भी दोष का निषेध करने का लक्ष्यार्थ है। नास्ति से अस्ति से लेकर तो दोष देखने में शुद्धि का लक्ष्यार्थ है और शुद्ध स्वरूप को देखने में भी शुद्ध होने का लक्ष्यार्थ है। तो लक्ष्यार्थ देखे तो दोनों कार्य विरोध है, दोनों भाग
विरोध है,
विरोध है, विरोध है ही नहीं। दोनों बात शुद्धिकरण की ही है, इसलिए इसमें विरोध नहीं है। ऊपर ऊपर से देखे तो विरोध लगता है, लेकिन लक्ष्य से देखे तो दोनों में आत्मा की स्थिति है, इसलिए दोनों विरोध है। तो इसीलिए तो जैन दर्शन में बड़े बड़े अन्य मत वाले सूक्ष्म शंकराचार्य जैसे आद्य शंकराचार्य बहुत सूक्ष्म वाले थे, पांचवी गुरु इसका यही कारण है कि द्रव्यार्थिक नहीं और पर्यायार्थिक नहीं, परस्पर विरुद्ध विषय करने वाले नहीं है ज्ञान के। जीव का ज्ञान है पर अपने विषय में परस्पर विरोध विषय विरोध है। एक का विषय द्रव्य है, एक का विषय है, एक का विषय नित्य है, दूसरे का विषय अनित्य है, एक का विषय शुद्ध है, दूसरे का विषय शुद्ध है। बहुत बड़ी उत्पतन बात चलती है यहाँ पर, ऐसा लगता है। यानी विषय विरोध होने पर भी वास्तव में विरोध नहीं है क्या?
वास्तव में विरोध नहीं है।
भय विरोध धनशीली श्याप पदाम के जिन वचन से रमन के जिन वचन कैसा होता है कि उभय नय विरोध को ध्वंस करने वाला होता है। स्वयं बांध वो जिसका मोह गमन हुआ उसको तो दोनों नय का विरोध ध्वंस विरोध को तोड़ दिया और वही तीन वचन में रमन था। इसे कोई जीव वचन से आता है, जीव वचन से बराबर मालूम होता है। इसलिए कहेंगे इधर
प्रत्याविष्कार
हिंदी में सब वह नया विरोध दंशिनी शार पदम के जिन वचन से रमनते ये स्वयं बांट मौना सपन ही समय सारे ज्योति उच्च अनुगम नए पक्षाक्षण की क्षण करिए विरोध है और विरोध का नाश करने वाला स्याद मुख से चिन्हित जो जिन भगवान का वचन है उसमें जो पुरुष ढूंढते हैं वे अपने आप ही विख्यात कर्मों के उदय को भंगन करके अतिशय रूप परम ज्योति प्रकाश मुस्तमा को तत्काल ही देखते हैं, प्राप्त करते हैं। और समस्या रूप सिद्धात्मा नवीन उत्पन्न नहीं हुआ है किंतु पहले कर्मों के आच्छादित था तो वह प्रगट व्यक्ति रूप हो गया और वह सर्वथा एकांत रूप होने के पक्ष से चिंतित नहीं होता, ऐसा निर्वाह है। तो हर बात में कहीं भी विरोध है ही नहीं। ये 833 में कहेंगे कि मैं शुद्ध हूं, प्रकृष्ट शुद्ध हूं, उत्कृष्ट शुद्ध हूं, परम शांत स्वरूप हूं, फिर विकल्प क्या, खेद क्या, कौन सी चिंता, कोई बात मुझे है
नहीं,
तो उसकी भावना तो ऐसे रहेंगे पर्याय में जो दोष नहीं आएगा खेद करेंगे। कोई कपड़ा है तो बिल्कुल नया मिट्टो हो गया सफेद
आई
और कोई कपड़ा एक दिन उसमें से बनाए हुआ पहन लिया फिर भी इतना मेला नहीं हुआ है फिर भी इसके साथ रखो तो वो मालूम पड़ेगा कि नहीं ये बिल्कुल सफेद है इसमें कुछ मेला कम है। आस पास में रखने से पता चलता है ऐसे दृढ़ शुद्ध और पर्याय अशुद्ध कहां तक के एक अंश भी अनंतमा भाग में भी अशुद्ध अंश रहा तो जिसकी दृष्टि में शुद्ध दृढ़ है उसको पता चलेगा कि ये अशुद्ध है। शुद्ध भाव में क्यों भूल जाते हैं क्रांति क्यों होती है, शुद्ध भाव में क्रांति क्यों धर्म की होती है। मैं आत्मा का स्मरण करता हूँ, मैं परमात्मा का स्मरण करता हूँ, मुझे उसमें बहुत एकाग्रता रहती है स्मरण भाव में, लेकिन वो शुद्ध भाव है क्या शुद्ध भाव है कहाँ से मिलान करेंगे। शुद्ध ग्रह की दृष्टि जिसको होगी उसको शुद्ध भाव का एक कण भी मलिन भी भाषण होगा, वरना कषाय अधिक मंद होने से उसमें शुद्धि की भ्रांति हुए बिना रहने वाली भ्रांति हो जाएगी। क्यों कहा थोड़ी साता भी उत्पन्न होती है तो लगता है कि आत्मा की शांति हो गई। हमारे विद्वान से प्रश्न चला आत्मा का जब अनुभव होता है तो शांति होती है, बहुत शांति होती है। प्रश्न रखा कि ये मंद कषाय की मानसिक शांति है या ये अतीन्द्रिय अपने आत्मा के शांत गुण का परिणाम रूप शांति है। दोनों शांति को हम कैसे अलग अलग है वो पहचाने, डिस्टिंग्विश कैसे करें, दोनों की बराबरी नहीं है तो हम कैसे समझ सकें। हमको तो मानसिक शांति भी शांति लगती है और तो आत्मा की शांति तो शांति लगे ही लगे, तो हमारी भूल नहीं हुए वो कैसे करें।
शांति
की बात चल रही है, ये बात करनी तो भ्रांति हो जाएगी क्योंकि धर्म के क्षेत्र में कषाय मंद होता है, अधिक मंद कषाय भी हो सकता है, तो इसमें साता की मानसिक शांति भी महसूस होती है लेकिन वो आत्मा की शांति नहीं है। नहीं है आत्मशांति कोई अलग चीज है और कषाय की अधिक मंदता से उत्पन्न होने वाली साता की शांति कोई अलग चीज है। एक कृत्रिम है और एक कृत्रिम है, एक असली है एक नकली है। वेद विज्ञान से पता चलता है,
सोचने की बात ही नहीं है वो तो सोचने की बात ही नहीं, अनुभव अनुभव की बात है।
जिसको वेद विज्ञान होता है उसमें वहाँ भ्रांति होती नहीं, जिसको वेद विज्ञान का प्रयोगात्मक अभ्यास नहीं होता उसको वहाँ अपने आप को क्षेत्रामण हो जाएगी, क्या वंचना हो जाएगी, अपने आप की वंचना हो जाएगी, उनको भ्रांति में आ जाएगा। બધા ગલા છે બેસી રાખતો હોય પછી બાજુમાં પડખાવા માટે બીજી સાઈડ માં નહીં બાજુમાં બરાબર ઘસારો આપે અને બાજુમાં રાખીને ખબર પડે નહીં એટલી
પરીક્ષા કરવામાં એને એટલી તાકાત પડે છે સામાન્ય માણસ કે
એક્સપર્ટ હોય એને પણ બે વાર નથી ખબર પડે એવી વાત આ તો સ્થુલ વિષય છે ચક્ષુ ઇન્દ્રિય નો ખાલી સારી બાજુ એમાં સોના ની ફરક કેટલા નીકળે ખબર છે, પૂરા 5 માન નીકળે તમે ચાર પાંચ જણા બાકી બધું હમણાં
પચાસ વર્ષો
રૂપી પદાર્થ ચૈતન્ય રૂપી પદાર્થ ભેદ જ્ઞાન કા કિતના અભ્યાસ ના થઈ બહુ પછી તરફ અભ્યાસ ના બરોબર ખાતે પીતે બેઠતે ચલતે કિસી ભી ઉદય કે કાલ મેં પ્રયોગ ચાલુ હિ ચાલુ હવે સતત તબ પતા ચલતા હૈ કે સ્વભાવ ક્યા ચીજ હૈ ઓર સ્વભાવ ક્યા ચીજ હૈ ઉસકે જાતે ફરક નહીં આવે જહાં તક ઇતના અંતર અભ્યાસ નહીં હોગા તો ઉપર ઉપર તો સુન કરકે વિસ્મરણ કર જાયેંગે તો પણ કઈ ચીજ અપની પંગુ હોતી હૈ કભી સ્મૃતિ થોડી રહેતી હૈ થોડે કાલ કે બાદ દસ અભ્યાસ રખે તો આયુ તક સ્મૃતિ રહેતી હૈ દૂસરા આયુ મેં તો પ્રાણ છૂટને કે કાલ મેં વેદના બહુ કતની વેદના હવે સબ ભૂલ જાવે હમને હમરે જીવને અગિયાર નવ ગુરુ કા લબ્ધિ કા સ્મૃતિ સ્મરણ કા ધારણા કા અભ્યાસ હુઆ અનુભવ કા અભ્યાસ કભી નહીં હુઆ वो अपना स्वरूप का ज्ञान है उसमें अनंत गुण रहा है तो उसका बहुमान आता है भक्ति क्या चीज है तो ज्ञान की क्रिया है हमारे यहाँ रुधि वसा क्या हो गया है हम एक पद गावे ना उसको भक्ति कहते हैं क्या कोई पद गा लेते हैं तो उसको भक्ति कहते हैं हमने भक्ति कर ली वो भक्ति नहीं कहना ज्ञान में मूल्यांकन होने से बहुमान होना उसको भक्ति कहते हैं तो ज्ञान और भक्ति तो एक ही बात होगी और क्रिया क्या कि स्थिर रहने की क्रिया अपने ज्ञान में अपना उपयोग ज्ञानमय भाव से स्थिर रहना उसको क्रिया कहते हैं ज्ञान एक क्रिया ज्ञान क्या है कुछ ध्यान क्या है एकाग्र चिंता निरोध और ध्यान मोक्षास्त्र का तो हमारे गुणमय स्वरूप में हमारा उपयोग स्थिर हो गया और उपयोग में कोई अन्य चिंता का उद्भव नहीं हुआ तो ध्यान क्या वो भी स्थिर उपयोग को ध्यान कहते हैं स्थिर उपयोग ज्ञान के परिवार स्वरूप में स्थिर उपयोग उसको ध्यान कहते हैं क्या
नाली
ध्यान की परिभाषा ज्ञान की मुख्यता से ऐसे ही की जाती है कि ज्ञान को ज्ञान में रहना सभी ध्यान है क्या ज्ञान को ज्ञान में रहना सभी ज्ञान है बात खत्म ज्ञान से
चारित्र
द्रव्य એટલે દ્રવ્ય અને પર્યાય એટલે પર્યાય. ચારિત્ર જ્ઞાને પર્યાય છે, ચારિત્ર પર્યાય છે, ધ્યાન પર્યાય છે, કથા પર્યાય છે, ઉત્પાદ્ય જેને છે એ બધું પર્યાય.
ભગવાન નો જય.